नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अमानवीय कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। जापान के कुमामोटो भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। 9,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुडा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। विश्लेषकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 125 से अधिक होने का दावा किया है। एक रिपोर्ट।
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलियां चलाने और अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और POJK में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है। कब्जे वाले क्षेत्र में कराए जा रहे तथा कथित चुनावों के समय प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए हैं। भारत ने इन चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और संघर्ष विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। नए हमलों से अन्य देशों के भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि IRGC के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें सैन्य कमान केंद्र, मिसाइल और ड्रोन सुविधाएं, तटीय निगरानी केंद्र और रक्षा प्रतिष्ठान शामिल हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि केशन द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। ये ताजा झड़पें अमरीका के सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमलों के एक दिन बाद हुई है। हमलों में कथित तौर पर कम से कम 20 लड़ाके और 6 ईरानी सैन्य सलाहकार मारे गए थे। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच अमरीका के मिसाइल भंडार में कमी आने की खबर है। एक थिंक टैंक CSIS की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 महीनों में अमरीका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट और थार्ड वायु रक्षा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इससे इन मिसाइलों का भंडार काफी घट गया है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लिस्ट्रुक्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही ये हमले किए गए थे। जापान के कुमामोटो प्रांत में मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। मृतकों में 9 लोगों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी मौत भूकंप की वजह से हुई है या नहीं। भूकंप से यात्सुशिरो शहर में एक कागज फैक्ट्री की चिमनी गिर गई। मलबे से 10 लोगों को निकाला गया, जिनमें 8 की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। एक अन्य लापता व्यक्ति का शव भी आज बरामद किया गया। वहीं काशिमा कस्बे के एवॉन मॉल कुमामोटो में भूकंप के बाद हुए बड़े विस्फोट के बाद 12 लोगों को बचाया गया। इनमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रांत में 406 राहत शिविरों में 9,400 से अधिक लोग ठहरे हुए हैं। भूकंप के कारण करीब 79,700 घरों में पानी की आपूर्ति बाधित है जबकि 19,000 घरों में अब भी बिजली नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पूर्वी कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कांगो सरकार के अनुसार लगभग एक सप्ताह में मरने वालों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि इबोला अधिक तेजी से फैल रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार तक इस प्रकोप में 3,442 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,521 लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रकोप पिछले अधिकांश इबोला प्रकोपों से अलग है क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार बुंडी बोगियो वायरस के लिए कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। इसने पिछले किसी भी इबोला प्रकोप की तुलना में अधिक लोगों की जान ली है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। भूटान ने देश के विकास में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान की सराहना की। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्फू इकोलॉजी पार्क और उलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। दूतावास ने बताया कि भारतीय एक्जिम बैंक और भूटान के वित्त मंत्रालय के बीच 4,000 करोड़ रुपए की रियायती ऋण गारंटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही भारत के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और भूटान के खेसर ग्यालपो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर भूटान की सरकार को 45 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। नीरज 5वें जबकि रोहित और यशवीर 9वें और 10वें स्थान पर रहे। वहीं प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। चित्रावेल ने 2रा, सिल्वा प्रभु ने 3रा स्थान हासिल किया। ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं अनमोल खरब, तानिया हेमंत और राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा जबकि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। एचएस प्रणव हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। वहीं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला वर्ष 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अमानवीय कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। जापान के कुमामोटो भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हुई। 9,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में उन्नति हुडा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।